कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है। मंगलवार को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा,
फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेदर वेयरिंग ऑफ हिजाब फॉर्म्स पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ, दैट इज वेदर इट वॉज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। कोर्ट हैज हेल्ड एक्सेप्टिंग द कंटेंशन ऑफ द स्टेट दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ ईआरपी। Secondly, it has held that the whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution.
भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है। पूर्व कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस बारे में कहते हैं,
जो प्राइमा फेशियाई जजमेंट से लगता है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है और उसी संविधान के आर्टिकल 19 में 19(2) भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हम कर सकते हैं, और अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड होता है तो आपके फ्रीडम पर वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो भी संविधान के मौलिक अधिकार का ही अंग भी है।
कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती इस फैसले से निराश हैं।
हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ, एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है सड़कों पर। आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहां की होती है वो तमाशाबीन बन जाती है।
फैसले के विरोध में याचिकाकर्ता छात्राओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूपी और पंजाब सहित 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष गहरा गया है। पार्टी नेता एक दूसरे के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। गांधी परिवार के विरुद्ध भी आवाजें उठने लगी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया है। इस पर पलटवार करते हुए पार्टी के कद्दावर नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं,
कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माने वकील रहे देश के, अभी है भी, और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है जिनको।
पंजाब में हार के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी जैसे लोगों को जिम्मेदार बताया। इस बीच पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लिया है। पंजाब में आज नई सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 1,00,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भाजपा के भीतर आम राय नहीं बन पाई है। पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारण पार्टी को ऐसी परेशानी हो रही है। हार के बावजूद पुष्कर सिंह धामी का नाम मुख्यमंत्री के लिए सबसे आगे बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और चलते चलते थोड़ी चर्चा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की। यह युद्ध अभी भी जारी है और भारत चाहता है कि दोनों देश बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाले। इस बीच मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा कि मुश्किल हालात में भी यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है।
That our community was dispersed across Ukraine, posing its own logistical challenges. The exercise was undertaken at a time when military actions, including airstrikes and shelling, were underway. It involved movement in a war-torn situation in a large country, at times over 1,000 kilometers, and it required exiting border checkpoints that were clogged by an estimated 26 lakh refugees.
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा,
एडवाइजरी देने के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स या हमारे सिटीजन्स वक्तिया क्यों नहीं पहुंचे, एक, और उसी वक्त दूसरे कंट्री के यानी कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी एटसेट्रा, उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, वो सेफली पहुंचे, कि क्या कारण हुआ?
एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी।
इन व्यू ऑफ द कंटिन्यूड बिल्डअप ऑफ टेंशन्स इन फरवरी, द एम्बेसी इशूड एन एडवाइजरी ऑन 15 फरवरी 2022 एडवाइजिंग इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन हु स्टे इज नॉट एसेंशियल to leave the country temporarily. It also advised Indian nationals not to travel to Ukraine or to undertake non-essential movements within Ukraine. Further advisories were also given on 20 February and 22 February, pressing students to leave Ukraine.
सरकार का दावा है कि 22,500 लोगों को यूक्रेन से वापस भारत लाया जा चुका है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।